प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कृतुदास जी महाराज द्वारा विषय कृष्ण की तीन शक्तियां दिनांक 18 जून 2013 को नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में दिया गया है।
तो इस तीन दिनों की कथा में आप सबका स्वागत है। तो ये कथा रहस्यमयी है, रसमयी है और सर्वांगिक कल्याणकारी है। अगर ये कथा सुन के आप निश्चय गांठ लगा लोगे तो यही जीवन में आपका संपूर्णतया कल्याण हो ही जाएगा। क्योंकि हमारे शास्त्र हैं, वो वार्तालाप से बने हैं। कोई सवाल पूछ रहा है और उनसे वरिष्ठ, सवाल करने वाले से वरिष्ठ जो है वो जवाब दे रहे हैं। अर्जुन उवाच, भगवान उवाच, परीक्षित उवाच, सुखदेव सुख उवाच। तो इसी तरह ही ये वार्तालाप है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो युग अवतार है, युग अवतारी, जो साक्षात राधा कृष्ण है अन्य, और जिनको उपदेश दिया जा रहा है वो गौड़ देश वंथड़ भारत देश के प्रधानमंत्री थे, शिल सनातन गोस्वामी, और सारस्वत ब्राह्मण जन्म से और पंडित, संस्कृत में पारंगत, और भगवान के शुद्ध भक्त कहते हुए परिकर, भगवान के संगी, भगवान चैतन्य देव के पार्षद। तो सनातन गोस्वामी उनका संक्षिप्त में परिचय मैं देना चाहूंगा कि सनातन गोस्वामी उच्च ब्राह्मण कुटुंब में उनका जन्म हुआ और शास्त्रों का संस्कृत में अध्ययन किया और बहुत बड़े विद्वान थे। और उन दिनों 500 साल पहले मुसलमान राजाओं का राज्य था, तो राजा ने उनको प्रधानमंत्री का पद दिया, इसलिए वो प्रधानमंत्री की जवाबदारी अदा कर रहे थे, करना ही पड़ा ऐसा बोल दो, ब्राह्मण होते हुए मुसलमानों की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन थे प्रधानमंत्री सारे राज्य का और वो सब शास्त्रों में पंडित, पहले सबसे पहला भागवत, हर रोज भागवत की चर्चा अपने ब्राह्मण मित्रों से वो करते थे, बड़े विद्वान थे। सो सनातन गोस्वामी तो उपदेश देने वाले हैं साक्षात भगवान चैतन्य देव। तो चैतन्य महाप्रभु की तत्व, चैतन्य तत्व, उनके ऊपर मैं चाहता था कि थोड़ा सा चर्चा कर लो, लेकिन थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु के बारे में शास्त्र युक्त बात कर लेते हैं। लेकिन इतना समझ लो कि चैतन्य महाप्रभु ये युग अवतारी है, अर्थात कलयुग का श्री कृष्ण भगवान का अवतरण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो चैतन्य महाप्रभु ये शास्त्रयुक्त जीव ईश्वर और माया की बात यहां कर रहे हैं। जीव ईश्वर और माया, तो साक्षात भगवान और भगवान के पार्षद शुद्ध भक्त सनातन गोस्वामी, इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप है वो हम कथा के रूप में सुनेंगे। और ये जो सारी कथा है मैं सिनप्सिस अर्थात बहुत संक्षिप्त में करूंगा। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये 17 वॉल्यूम 17 बुक 17 किताब का एक ग्रंथ ऐसा जिसको हम कहते हैं चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। भगवद गीता ये मैट्रिकुलेट 12th तक की स्टडी, भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम भागवत पुराण ये अंडर ग्रेजुएट स्टडी है। BSc BA BBA अंडर ग्रेजुएट यानी चैतन्य चरितामृत ये ग्रेजुएट स्टडी है अर्थात दी मास्टर डिग्री लेवल PhD लेवल चैतन्य चरितामृत। तो इसमें से हम बात करेंगे। पहले से ही हम ऊपर बहुत ऊंची कक्षा से शुरू करेंगे, लेकिन मैं कई श्लोकों में थोड़ा प्रिलिमिनरी भी ले लूंगा या तो बिगिनिंग शुरुआत का जो ज्ञान भगवद गीता में भगवान कृष्ण दे रहे हैं दूसरे अध्याय में, तो वो भी थोड़ी सी कथा हम कर लेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ज्यादातर भक्त लोग हैं इसलिए मैंने सोचा दोनों का समन्वय करेंगे हम दोनों का। तो आइए, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है एक पिक्चर में गोलोक वृंदावन का सीन है। गोलोक वृंदावन अर्थात भगवान श्री कृष्ण का धाम, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये जो मेरा एरो आप नहीं दिखाई देगा इधर क्योंकि कनेक्शन नहीं है उधर है। एनीवे ये चैतन्य महाप्रभु नीचे और उनकी लीला चैतन्य महाप्रभु। तो ये मायापुर नवदीप धाम, तो नवदीप धाम ये गोलोक वृंदावन का एक हिस्सा है। गोलोक वृंदावन में द्वारिका मथुरा और वृंदावन गोलोक वृंदावन, तो सनातन तबे सनातन प्रभु चरण धरिया दैन्य विनंती करे दंते तृण लैया। तो ये श्लोक की आगे वाली कथा ये है कि सनातन गोस्वामी ये राजा हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे, तो उनको ये यवन राजा की नौकरी करनी नहीं थी क्योंकि सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे राजा हुसैन शाह के, तो उनके भाई थे रूप गोस्वामी, रूप साकर मल्लिक दबीर खास, साकर मल्लिक मुस्लिम नाम, वैसे रूप गोस्वामी नाम है लेकिन साकर मल्लिक एंड सनातन दवीर खास। तो रूप गोस्वामी ने रेजिग्नेशन दिया तो वो राजा ने स्वीकृत कर लिया और रूप गोस्वामी रिजाइन करके अपनी जो जायदाद, बहुत बड़ी जायदाद थी, तो वो बंटवारा करके और सनातन गोस्वामी को छूटने के लिए, वहां से भागने के लिए कुछ सुविधा करनी थी, तो वो 10,000 सोना मोहर उन्होंने एक सेठ के यहाँ गिरवे रखी और बाकी का सब 50% वैष्णवों को, ब्राह्मणों को उन्होंने बांट दी और अपने पास कुछ नहीं, सारा बांट के वृंदावन चले गए। तो ये जो 10,000 सोना मोहर गिरवे रखी थी, तो रूप गोस्वामी ने पत्र लिखा सनातन गोस्वामी को कि आपके लिए मैंने ये 10,000 सोना मोहर ये जगह पर गिरवे रखी है। तो सनातन गोस्वामी राजा को कहते हैं मुझे अभी नौकरी नहीं करनी है, नहीं करनी। राजा उनका राजीनामा स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी सिकले मैं बीमार हूं और घर 24 घंटा ब्राह्मणों के, विद्वानों के साथ भागवत ग्रंथ का सेवन करना, सुनना और स्क्रूटिनाइजिंगली चर्चा, भागवत की चर्चा करना और हर रोज मैसेज राजा को कि मैं बीमार हूं, बीमार हूं। तो महीना, दो महीना, तीन महीना, राजा को कुतूहल हुआ कि ये क्या बात है। तो वो खुद सनातन गोस्वामी के घर बिना कहे आ गए। तो देखा तो सनातन गोस्वामी पंडितों के साथ भागवत की चर्चा कर रहे हैं। तो राजा ने तुरंत सनातन गोस्वामी को जेल में पूर दिया और कालांतर राजा को साउथ इंडिया में लड़ाई चढ़ाई करने के लिए जाना पड़ा। तो सनातन गोस्वामी जो जेल के कांस्टेबल थे, जैन किंचार जेल जिसमें थे, वो जेल का जो सुप्रिंटेंडेंट था, उनको बोला कि मैं मुसलमान, मुझे हज करने जाना है, मक्का जाना है और आप मुझे छोड़ दीजिए, आपको ये 5,000 सोना मुहार देता हूँ मैं और मैं हज करके वापस लौटूंगा। तो मुसलमान था जेल कांस्टेबल, तो उन्हें छोड़ा नहीं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप ऐसा करो, ये 2,500 सोना मोहर और ले लो और राजा जब वापस आए बोलो कि वो लघु शंका करके, गुरु शंका करने के लिए, टट्टी करने के लिए वो नदी के किनारे, गंगा नदी थी तो नदी गए थे, तो वहां जाके वो नदी में बहाव आया और वो तनाव में वो फंस गए और उनका देहांत हो गए, देहांत हो गया, ऐसा बोल देना। तो वो लालचू था जेल का सुप्रिंटेंडेंट, तो 2,500 और सोलह मोहर लेके सनातन गोस्वामी को आजाद कर दिए जेल से। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन की ओर, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर गए थे, तो वृंदावन की ओर जाते हैं रास्ते में बड़े बड़े जंगल पर्वत आए, तो वहां चोर लुटारू बहुत थे और उनका एक राजा था और सनातन गोस्वामी के साथ उनका नौकर, ये नहीं चाहते थे कि वो आए, लेकिन वो नौकर उनके साथ चला, तो उनके जेब में 800 सोना मोहर थी। तो चोरों की दृष्टि वो सोना मोहर पर थी, अर्थात वो मार देते थे और लूट लेते थे। तो सनातन गोस्वामी को थोड़ा सा शक हो गया कि इनके पास कुछ है। तो पूछा कि आपके पास कुछ धनराशि है क्या। सनातन गोस्वामी ने ये पूछा कि कुछ आपके पास धनराशि है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास है। तो उन्होंने कहा कि ठीक, आप ये सारी धनराशि जो है वो इन चोर लोगों का जो राजा था उनको दे दो, और वो होटल में वहां ठहरे थे। तो 7 सोना मोहर दे दी और एक फिर भी उनने रखी। तो फिर से शक हुआ कि उनने कुछ रखा है। तो उनने कहा कैसा करो, आप 1 सोना मोहर है आप ले लो और आप यहां से वापस चले जाओ और मैं आगे चलूंगा। तो ये राजा था चोरों का, तो उनको ये सज्जन लगे सनातन गोस्वामी, और उनसे आकृष्ट हुए और उनको बहुत सलामती से पर्वत पार किए, जंगल पार किए और अपने सिपाहियों को भेज दिए उनको। तो वहां से सनातन गोस्वामी आगे आते हैं, तो पहुंचते हैं वाराणसी, काशी, बनारस। तो यहां से ये पावर पॉइंट शुरू होता है, इसलिए मैंने आगे वाला संदर्भ आपको कनेक्शन किया। तो क्या है यहां कि सनातन गोस्वामी जहां चैतन्य महाप्रभु ठहरे थे चंद्रशेखर के यहां, तो चंद्रशेखर के यहां बाहर सनातन गोस्वामी आते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु अंदर बैठे हैं, और वो भगवान है जान गए अंदर बैठे बैठे कमरे में वे इनसाइड, तो जान गए कि सनातन गोस्वामी द्वार पर खड़े हैं। तो उनने चंद्रशेखर को कहा कि ये जाओ आप बाहर, और जो भी बाहर खड़ा हो उनको अंदर लेके आओ। तो चंद्रशेखर घर के बाहर आए तो उनने तो कोई देखा नहीं, लेकिन एक मुसलमान जो मुसलमान का ड्रेस, लंबी दाढ़ी और राजा जैसा ड्रेस मुसलमान, तो अंदर आते हैं चंद्रशेखर और भगवान को कहते हैं बाहर तो कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहेंगे कोई मुसलमान अंदर आए। सनातन गोस्वामी जो मुसलमान के ड्रेस में थे, तो उनको चंद्रशेखर अंदर लेके आते हैं और तुरंत चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं। और सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, ये श्लोक में है, क्या है, तबे सनातन प्रभुर चरण धरिया, दैन्य विनंती करे दंते तृण लिया। तो सनातन गोस्वामी अपने गुरु के पास जा रहे, तो चैतन्य महाप्रभु गुरु है, तो गुरु के पास जाना है तो कैसे जाना चाहिए, तो दंते तृणकम निधाय, दैन्य विनंती और दीनता, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात दैन्य विनंती शरणागति, सो दैन्य विनंती करे, सो दीनता से विनंती कर रहे हैं, और कैसे, दंते तृणकम निधाय, यह दंते तृण लैया, उसका अर्थ है कि मैं तृण की तरह तुच्छ हूं, अर्थात शरणागति और अपने आप को गुरु के सामने कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, हाउ टू अप्रोच ए गुरु, गुरु के पास समीप कैसे जाना चाहिए, तो दंते तृणकम निदाय, दंते तृण लैया, दंते तृण लैया, और आगे क्या, दैन्य विनंती, दीनता, ऐसा नहीं मैं जानता हूं और मैं जैसे जानता हूं ऐसे मेरे सवाल का जवाब दो तभी मैं, ऐसा नहीं, यू मेक मी हियर व्हाट आई वांट टू हियर, नॉट यू व्हाट यू वांट टू टेल मी, नहीं ऐसा नहीं, विनंती, दैन्य विनंती, दीनता, परिप्रश्नेन, प्रश्नेन परिप्रश्नेन, अर्थात हमें सबमिसिव इंक्वायरी, प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन क्या करते हैं इस श्लोक का, परिप्रश्न का अर्थ क्या करते हैं, सबमिसिव इंक्वायरी, अर्थात विनय विनंती के साथ गुरुदेव को सवाल करना। तो यह क्या है, दैन्य विनंती करे दंते तृण लैया, तबे सनातन प्रभु चरणे धरिया, चरणे उनके चरण में प्रणाम करने का अर्थ है कि मैं शरणागत हूं, शरणागत हूं, शरणागति, तद्वित्ति प्रणिपात, प्रणिपात का अर्थ है शरणागति, टोटल सरेंडर, ऐसा नहीं मैं थोड़ा सा स्वतंत्रता में रखता हूं और 90% में आपको शरणागत हूं, 10% में, ऐसा नहीं, संपूर्णतया कंप्लीट सरेंडर, प्रणिपात, प्रणिपात, प्रपन्न, वे टू प्रपन्न, तद विज्ञार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत, अभिगच्छेत, गुरु के पास जाना चाहिए, नहीं गुरु हमारे पास आएगा और गुरु मुझे यू नो श्लाघा करेगा, बहुत अच्छे हो, यू नो मेरा शरणागत हो, नहीं, गुरु को जरूरत नहीं है और गुरु भी वैसे शिष्य इकट्ठा करना नहीं चाहता, क्योंकि कितना बर्डन, पाप की गठरी, सारी उम्रों की, सारे जीवन जीवने ली बिताया, जो भी पाप किया सारा गुरु को लेना पड़ता है, तो गुरु नहीं चाहता कि ज्यादा, यू नो, लेकिन अगर कोई शिष्य सबमिसिव इंक्वायरी, प्रणिपात, परिप्रश्न और विनित, दैन्य विनती और दंते तृणक, तृणकम निधाय, दंते तृण लैया, तो ऐसी ऐसा विनित और सबमिसिव शरणागत जीव जब गुरु के पास आता है तो नमस्कार, तद विद्य प्रणिपाते न परिप्रश्न एंड सेवया। तो सनातन गोस्वामी कैसे गुरु के पास जाना चाहिए वो हमें सिखा रहे हैं। मैं हिंदी पढ़ूंगा, अपने मुंह में एक तिनका रख कर तथा शीश झुका कर सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और विनती विनित होकर इस प्रकार कहा, इस प्रकार विनती, इस प्रकार कहा, क्या कहा, नीचे जाति नीचे संगी पतित दम, कुविषय कुपे पड़ी गोआइनु जनम। बहुत ऊंची बातें होने जा रही है, आप थोड़ी सी धीरज रखिए। आई एम गिविंग यू ऑल यू नो बैकग्राउंड ऑफ दिस कथा, मैं आपको एक कथा में सारा यू नो परिचय और सब कुछ, कथा का पूर्व भूमिका देके आपको कथा में ले जा रहा हूं। बहुत ऊंची कथा है और देखो यहां सनातन गोस्वामी कैसा स्वभाव लेके अपने गुरु को, गुरु के पास जाते हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो कहते हैं मैं नीच जाती, नीच संगी, मेरा संग भी नीच, मुसलमानों का, मुसलमान राजाओं का, यवनों का संग, जो गाय को खाने वाले यवनों का संग, नीच संगी और नीच जाति थे ब्राह्मण, लेकिन अपने को नीच जाति क्यों बताते हैं? साकर मल्लिक, दबीर खास, मुसलमान राजा की नौकरी की, और नीच जाति, मैं नीच जाति हूं, नीच जाति, नीच संगी, पतित अधम, और मैं बहुत पतित हूं, मैं गिरा हुआ हूं, ये भवसागर में गिरा हुआ पतित, और मैं अधम हूं, मैं निकृष्ट हूं, मैं गिरा हुआ हूं, अधम, पापी हूं, पतित हूं। तो पतित अधम, कुविषय कुपे पड़ी गुआनु जन्म, कुविषय, विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध, ये पांच विषय है। तो वो विषय रूपी कुएं में मैं गिरा हुआ हूं, अर्थात मैं विषयी हूं, मैं पापी हूं, विषयी हूं। कुविषय कुपे पड़ी, कुविषय रूपी कुप में, कुएं में मैं गिरा हुआ हूं, और गवाइनु जन्म, मैंने मेरा जन्म वैसे ही गवा दिया, कुविषय के कुपे, कुप में, और नीच जाति, नीच संगी, पतित अधम, कुविषय कुपे पड़ी गवाइनु जन्म, अपना हिताहित किछु नहीं जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडिताई, पंडिताई सत्य करी मानी, अपनार हिताहित किछु नहीं जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडिताई सत्य करी मानी। ये श्लोक एज इट इज नहीं, क्योंकि टाइप किए हुए तो थोड़ी गलती आए, क्योंकि इंग्लिश में भगवद गीता है, तो थोड़ा, ग्राम्य व्यवहार पंडिताई सत्य करी मानी। सो अपना हिताहित, गुरु को, चैतन्य देव को कहते हैं कि मेरा हित और अहित क्या है मैं नहीं जानता। ऐसा नहीं गुरु के पास जाओ और मैं सब कुछ जानता हूं, और मैं जैसे जानता हूं वो और उसी तरह आप जब जवाब दोगे तो मैं गुरु बनाऊंगा। ज्यादातर ये अप्रोच है लोगों का, ज्यादातर मैं जानता हूं, मैं गुरु से, गुरु की कंपटीशन, मैं गुरु से ज्यादा पढ़ा लिखा, जानता हूं शास्त्र सब कुछ। तो यह सनातन गोस्वामी क्या कहते, अपना हिताहित, मेरा हित क्या है, अहित क्या है, किछु ना जानी, मैं ये नहीं जानता, किछु ना जानी, मेरा हित क्या है और अहित क्या है मैं नहीं जानता। और ग्राम्य व्यवहार है पंडिताई सत्य करी मानी, और ग्राम्य व्यवहार अर्थात ग्राम्य कथा, गांव में कथा, चुगली, द्वेष वगैरह, ग्राम्य व्यवहार, गांव के समाचार एक दूसरों को देते हैं, उनने ये किया, उनने वो किया, उनने, ग्राम्य व्यवहार। तो पंडित आए उसमें पंडित, सो कृपा करी अधि मोरे करिया छे उद्धार, अपन कृपा ते कह कर्तव्य अमार। सो गुरु को पहला सवाल क्या करना चाहिए, कृपा करी अधि मोरे करिया छे उद्धार, हे गुरुदेव कृपा करके मेरा उद्धार करो, कृपा करी अधि मोरे करिया छे उद्धार, हे गुरुदेव कृपा करके मेरा उद्धार करो। और आपन कृपा ते कह कर्तव्य अमार, और आपकी कृपा से मुझे ये बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। स्वधर्म पृच्छा कृष्णस्य हेतवे। चौथा भक्ति, साधना भक्ति की चौथी भक्ति, रूप गोस्वामी उपदेश भक्ति रसामृत, चौथी भक्ति क्या कि गुरु से पृच्छा करनी चाहिए। क्या पृच्छा करनी चाहिए? मेरा कर्तव्य क्या है, कृष्ण को खुश करने के लिए मेरा कर्तव्य क्या है, ये पूछना चाहिए। आदौ गुरुपाद आश्रय कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम विश्रम बेन गुरु सेवा, और चौथा है स्वधर्म पृच्छा कृष्णस्य हेतवे। स्वधर्म पृच्छा, मुझे क्या करना चाहिए, ये पृच्छा करनी चाहिए गुरु से। तो अपना आप अपने कृपा थे, अपनी कृपा से कर्तव्य अमार, मेरा कर्तव्य क्या है ताकि कृष्ण मेरे पर खुश हो, ये आप बताइए मेरा कर्तव्य क्या है। तो कृपा करी यदि मोरे करी आचे उद्धार, कृपा करके मेरा उद्धार करो। और आपन कृपा ते कह कर्तव्य अमार, आपकी कृपा से मुझे ये बताइए कि मेरा उद्धार कैसे हो सकता है और मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। नेक्स्ट 102। के आमी के ने अमर जारे तापत्रे, या नहीं जानी हमी के मने हित है। के आमी के ने अमर जारे तापत्रे, या नहीं जानी हमी के मने हित है। सो के आमी अपने गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी पूछते हैं, क्या पूछते हैं, के अमी मैं कौन हूं। तो ये जीव, हमने जो एडवर्टाइजमेंट की है जीव ईश्वर माया, तो यहां से शुरू होता है क्या, के अमी मैं कौन हूं। के अमी के ने अमार जारे तापत्रय, और मैं ये तीन तापों में तपित हो रहा हूं, आदि देविक आदि भौतिक आदि आत्मिक क्लेश, ये तीन तापों में मैं तपित हूं। जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, ये तापों में मैं तपित हूं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इन षड रिपुओं से मैं तपित हूं। छह दुश्मनों से अंत शत्रु से मैं तपित हूं। आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश, देवों से दुख, आदिदेविक आदि भौतिक दूसरे आत्माओं से दुख, आदि भौतिक आध्यात्मिक हमारे खुद के पैदा किए हुए दुख, मन से दुख पैदा करते, सबसे बड़ा दुख है मन से दुख, मन का दुख सबसे सबसे सीवियर, सबसे कड़ा दुख वो मन, मानसिक रोग, मानसिक दुख। तो ये तापत्रय आदिदेविक आदि भौतिक आदि आत्मिक तीन ताप, हम लोग ये भौतिक जगत में सनातन काल से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्करों में चल रहे हैं। अभी मृत्यु आएगा, अभी मृत्यु आएगा, डर। लेकिन ये हरे कृष्ण संस्था हमें नी डर बनाती है, नी डर, और इसके साथ लीडर, लीडर भी बनाती है, लीडर सबके, नीडर। तीनों ताप से मुक्त, कोई भी ताप हमें तपित नहीं करेगा। इसलिए कृष्ण कथामृत गोपियां गाती है, ताप से मुक्त होना है तो क्या करना होगा। तव कथामृत तत् जीवन कवि वीरितम कर्म शापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम ब्रुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तप्त तपित जीवन, जो तपित है आत्मा है। तव कथामृतम भगवान श्री कृष्ण की कथा, नाम रूप लीला गुण धाम परिकर शक्ति, तो ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का नाम, ये तपित जीवन, जिनका तपित जीवन है, तापित तप्त जीवनम, तो उनका जीवन है भगवान कृष्ण का नाम और कथा। ये तपित जीवनों का जीवन है, गोपियां गोपी गीत में कह रही है, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि व्रीड़ितम कल्म शापनम श्रवण मंगलम श्रीमद आततम भूवि गृणंती ये भूरिदा जना। तो यहां सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, के अमी केने अमार जावे तापत्रय, मैं भौतिक संसार में मैं तपित हूं, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस थ्री फोर मटेरियल मिजरीज, ये तीनों ताप, आदि देविक आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक ताप से मैं तप्त हूं, तो ये मेरे तीन ताप कब मिट जाएंगे। के अमी केने अमर जारे तापत रहे, ये तीनों ताप मेरे कब चले जाएंगे ये मैं नहीं जानता। यह नहीं जानी अमी के मने हित है, मैं नहीं जानता और मेरा हित भी कैसे हो वो भी मैं नहीं जानता। के मने हित होय, बहुत ऊंचा वार्तालाप है, कोई मामूली बात नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी ऊंचे स्तर पर ऊंचे लोगों से हम शुरू करते हैं, के अमी के ने अमर। सो ये गुरुदेव को सबसे पहला सवाल ये करना चाहिए कि मैं तपित हूं, तीन तापों में तपित हूं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में मैं गिरा हुआ हूं, तो मेरा कल्याण कैसे हो। यह नहीं जानी अमी के मन हित हो, और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा हित कैसे हो। यह नहीं जानी अमी के मन हित हो। नेक्स्ट, साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहत अपनी। ये बंगाली में ये चैतन्य चरितामृत लिखी गई है, सो दिस इज बंगाली, हिंदी से मिलती जुलती है बंगाली, सब नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस सारी मिलती जुलती है। तो साध्य साधन तत्व पूछिते ना जानी, साध्य साधन तत्व क्या है वो मैं नहीं जानता, साध्य क्या है और साध्य करने का साधन क्या है वो मैं नहीं जानता। कृपा करी तब तत्व, मुझ पर कृपा करके ये तत्व साध्य साधन मेरा हित, तीन तापों से छुटकारी कैसे मिले, मैं कौन हूं, ये सब तत्व मुझे आप कृपा करके कहो। कृपा करी सब तत्व कहत आपनी, 104। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तो माते पूर्ण है, सब तत्व जान तो मान नाहीं तापत्रय। चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि सनातन गोस्वामी ये बहुत बड़े ऊंचे भक्त हैं और उनके परिकर हैं और नित्य सिद्ध, नित्य मुक्त, निरन्न मुक्त आत्मा है सनातन गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन को कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम पर भगवान कृष्ण की पूरी कृपा है जिनके कारण तुम्हें यह सारी बातें ज्ञात हैं। कृष्ण की पूरी कृपा है जिसके कारण तुम्हें यह सारी बातें ज्ञात हैं। तुम्हारे लिए तीनों तापों का अस्तित्व नहीं है। सनातन गोस्वामी एक्चुअली निरन मुक्त भक्त है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ रिकग्नाइज करते हैं कि आपके लिए कोई तीन ताप नहीं है, फिर भी आप दृढ़ता करने के लिए पूछ रहे हो। नेक्स्ट, कृष्ण शक्ति धर तुमी जान तत्व भाव जानी दृढ़ लागी पूछे साधु र स्वभाव। साधु का स्वभाव ये है कि खुद जानते हैं, खुद मुक्त हैं, फिर भी उनको दृढ़ करने के लिए और दूसरे लोगों के कल्याण के लिए वो ऐसे सवाल करते हैं। तो कृष्ण शक्ति धर तुमी सनातन गोस्वामी को कहते हैं चैतन्य देव कि आप में कृष्ण की शक्ति का संचार है, इसलिए आपको सब कुछ जानते हो। कृष्ण शक्ति धर तुमी जान तत्व भाव, सब तत्व आप जानते हो। जानी दृढ़ाए लागी पूछे साधु र स्वभाव, और उनको दृढ़ करने के लिए पूछते हो ये साधु का स्वभाव है। चूंकि तुम्हें कृष्ण की शक्ति प्राप्त है अतएव तुम इन बातों को जानते हो, किंतु प्रसन्न करना तो साधु का स्वभाव है। यद्यपि साधु इन बातों को जानता है किंतु अपने में दृढ़ता लेने के लिए वे प्रश्न करता है। अपने में दृढ़ता करने के लिए ये प्रश्न करता है। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु जारीखान जंगल में 106 अचिरादेव सर्वार्थ सिद्ध्यति एषाम अभिप्सित सतस्तर्मस्य अबोधाय एषाम निबंधनी। जो लोग ये संस्कृत हैं, जो लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए उत्सुक हैं, जिन लोगों के पास अविचल बुद्धि है और जो विचलित नहीं होते, वे अवश्य ही अति शीघ्र जीवन का इच्छित लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सुंदर बात बताई कि जो लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए उत्सुक है, हमें हमारी आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, हर पल उत्सुक रहना चाहिए। और जिन लोगों के पास अविचल बुद्धि है और जो बुद्धिमान है, समझ सकते हैं कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, बुद्धि से समझ में आएगा। तो ये बुद्धि की जरूरत है। और जो विचलित नहीं होते, जो फिक्स विचलित भटकते नहीं, इधर उधर भटकना, विचलित नहीं होते और अवश्य ही अति शीघ्र जीवन का इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो तीन चीजें हमें दृढ़ता से करनी होगी। एक है कि जिन लोगों में अविचल बुद्धि है और चेतना जगाने के लिए उत्सुक है, दो, और तीसरा जो विचलित नहीं होते, तो ये तीन कथा सुनने वाले और करने वाले दोनों में ये तीन चीजें होनी चाहिए, दृढ़ता, विचलित नहीं होना, और दृढ़ता, उत्सुकता और बुद्धि, अविचल, अविचल बुद्धि। तो ये तीन चीजें हमें लेके आना होगा हर रोज कथा में। 107 नेक्स्ट। योग्य पात्र हो तुम्ही भक्ति प्रवर्तारी ते, क्रमे सब तत्व सुन कहिए तुमाते। आप योग्य पात्र हो। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को क्या कहते हैं? आप योग्य पात्र हो। योग्य पात्र तुम्ही, आप योग्य पात्र हो। तुम भक्ति संप्रदाय का प्रसार करने के लिए योग्य हो। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु पहचानते हैं कि भक्ति, शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए आप योग्य पात्र हो, क्योंकि आप में वो तीनों चीजें हैं, अविचल और बुद्धिमान और श्रद्धावान और निश्चय, धीरज। तो चैतन्य महाप्रभु यहां कहते हैं तुम भक्ति संप्रदाय का प्रसार करने के लिए योग्य हो। योग्य पात्र हो तुम्ही भक्ति प्रवर्तक, भक्ति का प्रवर्तक, भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए आप योग्य पात्र हो। तो इसीलिए योग्य पात्र है, शिष्य योग्य पात्र होना चाहिए। और तीन लक्षण, और आगे वाले श्लोक में भी हमें बताया तीन लक्षण, कि आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए, उत्सुक होना चाहिए, अविचल बुद्धि होनी चाहिए। अविचल भ्रमित बुद्धि नहीं, आज ये कल वो, मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, नहीं मैं शरीर हूं, नहीं मैं आत्मा हूं, नहीं ये गुरु वो गुरु, ये फिलोसॉफी वो फिलोसॉफी, हजार प्रकार की फिलोसॉफी है सारे जगत में। अविचल, अविचल और आध्यात्मिक चेतना और उत्सुकता। तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो तीन चीजें हो तब ज्ञानी लोग हमें ज्ञान देते हैं, तत्व ज्ञान, ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान देते हैं। तो तीन चीजें क्या? तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात सरेंडर शरणागति, परिप्रश्नेन सबमिसिव इनक्वायरी आध्यात्मिक सवाल, और वो भी विनम्रता से जानने के लिए, नहीं कि मैं जानता हूं वैसा जवाब दो। तद विद्धि प्रणिपात परिप्रश्न सेवया और सेवा। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को योग्य पात्र पहचाना, योग्य पात्र समझे, इसलिए कहते हैं योग्य पात्र हो तुम्ही भक्ति प्रवर्तारी, प्रवर्तारीते प्रवर्तन, भक्ति प्रचार करने के लिए आप योग्य पात्र हो। इसलिए मैं क्रमे क्रमे सब तत्व सुन, मैं क्रमे क्रमे सब तत्व आपको बता रहा हूं। और हो सके तो हम पांच लंबे लंबे अध्याय हैं, ये तो पहले अध्याय का 107 आधा भी नहीं आया हम। तो मैं चाहता हूं कि पांचों अध्याय तीन दिन में हम संपन्न करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको संपूर्ण ज्ञान, वेदों का, इतिहास का, पुराण का, पुराण कुरान बाइबल तोरा, सब सारा ज्ञान ये पांच अध्याय में, कोई चैतन्य महापुरुष ने कुछ छोड़ा नहीं। मैं चाहता हूं कि ये पांचों अध्याय हम कंप्लीट करेंगे। तो यहां क्रमे क्रमे तत्व सुन, तो पहला तत्व आएगा जीव से शुरू होता है। तो ये तत्व सुन कहिए, आप मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा, तत्व के बारे में। सो 109, तो आगे सनातन गोस्वामी ने पूछा था सवाल, क्या पूछा था? के अमी, मैं कौन हूं? के अमी, केने अमर जारे तापत्रय, मेरी ये दुख, मेरा अत्यंतिक दुख निवृत्ति मेरी कैसे हो, और मैं कौन हूं, मेरा हित क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब सवाल पूछे आगे। तो अभी ये पहला जवाब, के अमी, मैं कौन हूं, यह नहीं जानी अमी, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। तो यह चैतन्य महाप्रभु जवाब दे रहे, जीवर स्वरूप हो कृष्णर नित्य दास, कृष्णर तथस्थ शक्ति वेदा वेद प्रकाश। आप मेरे पीछे ये दोहराइए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम कौन है? हम आत्मा है, हम जीव है। तो ये जवाब है, चैतन्य महाप्रभु जवाब दे रहे हैं। मेरे पीछे बोलो, जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तथस्थ शक्ति वेदा वेद प्रकाश। सो जीवेर स्वरूप है के अमी, मैं कौन हूं? चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं, आप जीवात्मा हो, और जीवात्मा क्या है? कृष्णेर नित्य दास। और जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म, स्वाभाविक धर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, जीव का स्वाभाविक धर्म क्या है? श्री कृष्ण का नित्य दासत्व, श्री कृष्ण का नित्य सेवा, नित सेवा, नित कीर्तन, औच्छव, निरखवा, नंद कुमार रे। तो जीवर स्वरूप है, आपका स्वरूप है जीव, और कृष्ण के नित्य दास हो। और ये जीव एक कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण का अंश है, अंश कहते हुए कृष्ण की शक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्णर तथस्थ शक्ति, न्यूट्रल एनर्जी, बीच वाली, तथस्थ शक्ति, न्यूट्रल एनर्जी। तो जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, कृष्ण के हम नित्य सेवक हैं। और ये तथस्थ शक्ति है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये तथस्थ जीव शक्ति वेद अवेद प्रकाश, अर्थात कई बार ये जीव माया में, भौतिक जगत में, और कई बार ये जीव आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक शक्ति में, दिव्य शक्ति में, चेतना चित्त शक्ति में। तो न्यूट्रल एनर्जी है तथस्थ शक्ति, कई बार माया में, कई बार कृष्ण में, या तो योग माया में, महामाया, योग माया, महामाया। तो तथस्थ शक्ति है वेद अवेद प्रकाश, जीव तथस्थ शक्ति। तो जीवर स्वरूप होय, तो दो पांच दस मिनट जीव के बारे में थोड़ी यहां चर्चा कर लेते हैं। अर्जुन भगवद गीता में भगवान से सवाल करते हैं, तो भगवान जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? कि ये जीव ये मेरा ही सनातन अंश है, जीव ये मेरा ही सनातन अंश है। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मन सष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ममेव अंशो जीव, ये जीव मेरा सनातन अंश, ऐसा नहीं कि जीव आत्मा कभी परमात्मा बन जाएगा। ये नर जो निज करणी करे तो नर का नारायण हो जाए, नहीं, एक गलत फिलोसॉफी है। जीव जीव ही रहता है सनातन, इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहां एक शब्द प्रयोग करते हैं सनातन। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सनातन रहेगा जीव, सनातन सनातन वो जीव ही रहेगा। तो दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन को डांटते हैं, अर्जुन को क्या डांटते हैं कि असोचान तुम सोचन तुम प्रज्ञावादांश भाष से गतांश गतांश नाचुम सोचती पंडिता। पंडित लोग जो होते हैं वो गए हुए और जिंदा लोग जो हैं उनका हर्ष शोक नहीं करते, और आप पंडिताई के बोल बोलते हो, पंडिताई के बोल बोलते हो। और ये जीव ये कैसा है वो भगवान आगे बताते हैं कि ये जीव ये सच्चिदानंद मय है और अजर अमर है, उनको पवन सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, और ये आमने सामने जो खड़े हैं वो सब जीवात्माएं हैं, उनका शरीर मरता है वो नहीं मरते, अर्थात हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेड बॉडी एंड ए लाइव बॉडी, तो जिंदा शरीर एंड मृत शरीर में क्या भेद है। तो जिंदा शरीर में जीवात्मा है, इसीलिए ये जीवात्मा सारे शरीर में अपनी चेतना फैलाए रखता है, चेतना फैलाता है चेतना। और जो मृत देह है उनमें आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, और ये चेतना हम फैक्ट्री में पैदा नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में पैदा नहीं कर सकते, टेस्ट में पैदा नहीं कर सकते। ये चेतना ये चेतन आत्मा में से पैदा होती है, और आत्मा को भी हम लेबोरेटरी में पैदा नहीं कर सकते, और कई साइंटिस्ट आजीवन कई सदियों से ये प्रूव करना चाहते हैं कि शरीर में एक मिनट में जब जीव चला जाता है तो तुरंत बाद में वो निकम्मा हो जाता है, और कभी भी उनको वापस चेतनामय नहीं कर सकते, जीवित चिन्मय नहीं कर सकते। तो क्या है एक मिनट में, अभी श्वास हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, चेतना थी, ज्ञान था, सब कुछ था, और ऑल ऑफ अ सडन जीव चला गया, मृतदेह पड़ा है, कोई चेतना नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई पत्नी है और उनका पति मर गया और वो रो रही है, मेरा पति चला गया, मेरा पति, रो रही है, और पति का शव उनके सामने पड़ा है और वो रो रही है, माय हस्बैंड इज गॉन, माय हस्बैंड इज गॉन। सो हु वाज हर हस्बैंड दैट इज गॉन, उनका पति कौन था जो चला गया, ये सवाल आग का सवाल है। और यही आध्यात्मिक जीवन की नींव है, आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन। बड़ी 100 मजले की इमारत बनानी हो तो उनका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, उसी तरह हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमारी नींव पक्की होनी चाहिए। नरसिंह मेहता कहते हैं ज्या लगी आत्मा तत्व चिन्यो नहीं त्या सुधी साधना सर्व जुट्ठी। आत्मा तत्व का ज्ञान सबसे पहले जरूरी है, आत्मा तत्व को पहचानना चाहिए, आत्मा का ज्ञान लेना चाहिए, और ये आत्मा को जानना यही आध्यात्मिक जीवन की नींव है। अगर ये नहीं फिक्स किया हमने, ये ठान नहीं लिया कि मैं आत्मा हूं, ये निश्चय नहीं किया ये तय नहीं किया तो बाकी का जो आध्यात्मिक जीवन, आप जो भी पूजा करो, पाठ करो, जो भी करो, सब 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 कुछ खोखला रहेगा, खोखला रहेगा। माँ उठानी जो जो रुष्टि जूठी, यू नो, सब आध्यात्मिक जीवन में आप जो भी कुछ करोगे जीरो। पहला क्या फिक्स करना है हमें, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मेरा मृत्यु नहीं है, मैं धनवान नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, भगवान का अंश जीवात्मा भगवान जैसा ही समृद्ध है, भगवान के बराबर, भगवान की तरह समृद्ध है। लेकिन अज्ञानता माया से हम समझ रहे हैं, मैं गरीब हूं, मैं सिख, मैं बूढ़ा, मैं मरने वाला हूं, नहीं, शरीर मरने वाला है, मैं और मेरा, हम सब कोई चीज को बोलते हैं मेरा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा शरीर, मेरा, लेकिन मैं कहां है, मैं कौन, ये सवाल आपका सवाल है। तो वो मैं है जो मृतदेह पत्नी के सामने पड़ा है, मृतदेह वो पति था कि कोई और था जिसके लिए वो रो रही है, ये सवाल आपका सवाल है। और अनादि काल से नास्तिक लोग ये समझ नहीं पा रहे। तो हम आत्मा है और ये आत्मा चेतन है, आत्मा में चेतना है। तो वो पत्नी अगर कहे 10 दिन के बाद कि मैं मेरे पति के मृतदेह के पास 10 दिन के बाद बैठूंगी, खाऊंगी, सो जाऊंगी और आनंद करूंगी, पति के साथ आनंद करूंगी, हो सकता है आफ्टर द फैक्ट? तो ये दिस इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ, ए फैक्ट है, ये सत्य है। और अगर हम ठान ले कि मैं आत्मा हूं, नो भाई, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो यार दुखो नहीं। अगर ये विश्वास हम कर ले कि मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं और मैं श्री कृष्ण का भक्त हूं, दास हूं, अगर ये विश्वास हमें कर ले तो बाद में दुख होना है, कोई भी दुख नहीं रहेगा, न मुझे मृत्यु है, न मेरा जन्म है, न मेरी सिकनेस है, न मेरा जीव कृष्ण दास। तो देखो, हम एक पल में हम खरबचपति बन सकते हैं, एक पल में हम मुक्त बन सकते हैं, एक पल में हम संपूर्ण आनंद बन सकते हैं। जस्ट इतना ही सोचना है और ठान के निश्चय करके उनको फिक्स रखना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, मैं आत्मा, बस इतना निश्चय कर ले हम, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो यार दुखो नहीं, सारा दुख अत्यंतिक दुख निवृत्ति हो जाए, बाद में हमें कोई दुख नहीं सताएगा, कोई दुख, क्योंकि हम मुक्त हो गए, हम शरीर है ही नहीं और सारा दुख शरीर का है। कोई भी दुख आप देखोगे तो उनका कारण एक ही होगा और वो है वो भूल, वो मिस्टेक कि हमने समझ लिया मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर को बुढ़ापा, तो बुढ़ापा का दुख मुझके, शरीर को रोग, तो शरीर का रोग का दुख मुझे, क्योंकि हम शरीर के साथ एक रूप बन गए, एक बन गए। जैसे आपकी 1.25 करोड़ की गाड़ी हो और गाड़ी के साथ आपको प्यार हो, हर रोज साफ सफाई और गाड़ी से लगाओ, और जैसे गाड़ी को पीछे से ट्रक ने बूम फिनिश, गाड़ी खत्म, तो हम बाहर आते गाड़ी से, क्या कहते हैं, यू हिट मी, यू रास्कल, यू हिट मी। तो वो खटारे वाले ने आपको हिट किया, आपकी गाड़ी को हिट किया, और आप क्या कहते हैं, यू हिट मी. सो व्हाई इज दैट? बिकॉज आई बिकम वन विथ कार, मैं ही गाड़ी हूं, इसलिए मैं बोलो यू हिट मी. सो उसी तरह हम शरीर नहीं है, लेकिन हम शरीर के साथ हमारी पहचान, मैं शरीर ही हूं. तो शरीर का सब दुख हमें लगता है, शरीर का सब दुख, शरीर बुरा हमें दुख, शरीर मर गया हमें दुख, शरीर हॉस्पिटलाइज हमें दुख, शरीर का दुख हमें लगता है. लेकिन शरीर से हम अलग हो जाना है, हम आत्मा है, हम दिव्य है, हम आनंदमय अभ्याषा, हमारा अभ्यास चिरन आनंदमय. ऐसा नहीं कि एक पल आपको दुख आ जाएगा बाकी का दुख नहीं, एक पल भी आपको दुख नहीं आना चाहिए. आनंदमय अभ्यास, जीव आनंदमय है, दुखमय नहीं है. लेकिन ये मिस्टेक, मैं शरीर हूं, ये भूल के कारण हमें सब दुख. तो हो गए मुक्त. अगर हम थाले में आत्मा हो और मुझे आत्मा के स्तर पर रह के आध्यात्मिक कृष्ण के संबंध में प्रवृत्ति में ही लगा रहना है और कोई प्रवृत्ति मुझे नहीं चाहिए, हो गए आप मुक्त, दुख का निवारण हो गया, न मृत्यु न जन्म न कुछ न रोग, आत्मा के स्तर पर हमेशा रहना चाहिए हमें, आत्मा के स्तर पर. और ये संस्था हरे कृष्ण संस्था आपको आध्यात्मिक आत्मा के स्तर पर लाके ही रहेगी, अगर आप बराबर निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ इस संस्था में जुड़े हो तो आपको भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाएगी, ऐसे इन स्नैप ऑफ अ फिंगर यू विल मीट कृष्णा फेस टू फेस एंड नो कुंठा. वाई कुंठा? कुंठा मीन्स एंजाइटीज, दुख. एंड वाई मीन्स नहीं, वैकुंठा नहीं, जहां दुख नहीं है. सो हम वो स्तर पर आ जाएंगे जहां दुख नहीं, अत्यंतिक दुख निवृत्ति, और वो स्तर पर आ जाएंगे जहां आनंद ही आनंद, आनंदान बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम. प्रतिपल अमृत का आस्वादन हम करेंगे, प्रतिपल हम आनंद का आस्वादन करेंगे. कब? जब हमें आत्मा के स्तर पर रहें, स्तर पर रहें. लेकिन हम रहते गिर जाते, फिर से आते हैं. दिस बेदा वेद प्रकाश, चैतन्य महाप्रभु ने यहां कहा है बेदा वेद प्रकाश, है ना. जीरो स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तथस्थ शक्ति बेदा वेद प्रकाश. मैं आत्मा के स्तर पर हूं, हरे कृष्ण, एंड देन ओ दुख 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 दुख. फिर से आत्मा के स्तर पर आए, दुख दुख दुख. ओ मैं शरीर हूं, मैं शरीर का दुख मेरा है और बच्चों का दुख मेरा है और सब संबंधियों का दुख मेरा है. नहीं, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम आत्मा है और कृष्ण के ही अंश है और किसी के अंश नहीं है. शरीर माँ बाप का अंश है, लेकिन हम शरीर है नहीं, शरीर माँ बाप का अंश है. तो शरीर माँ बाप को दे दो और जीव आत्मा कृष्ण नित्य दास, हमें कृष्ण का नित्य दासत्व करना है. वेदा वेद प्रकाश, तो वेदा वेद प्रकाश का अर्थ है ये जीव कभी मैं आध्यात्मिक स्तर पर हूं, आत्मा हूं, और बाद में मैं शरीर हूं, मेरा घर, मेरा कुटुंब, मेरा पैसा, मेरी नौकरी चली जाएगी, क्या होगा, एंजाइटी, मेरा बिजनेस, और फिर से हो ये सब तो दुखदाई है. फिर से हरे कृष्ण आध्यात्मिक स्तर पर वेद अवेद प्रकाश. लेकिन हमें हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा, हम आत्मा है और वो आत्मा सत्ता के रूप में आत्मा के स्तर पर हमें हमेशा रहना चाहिए. तो दुख होना है। कोई भी प्रकार का दुख हमारे पास नजदीक बिल्कुल आएगा नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन। तो यह है वेद अवेद प्रकाश, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और जीव का उदाहरण देते हैं कि जीव कैसा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तो क्या कहते हैं, सूर्य रे किरण छे अग्नि ज्वाला चय स्वाभाविक कृष्ण रे तीन प्रकार शक्ति है। तो कृष्ण की तीन प्रकार की स्वाभाविक शक्ति है, जैसे सूर्य, सूर्य का किरण और ज्वाला। तो ये तीनों किरण सूर्य से अलग है, कि सूर्य में से किरण आती है, किरण में से सूर्य नहीं आता। उसी तरह भगवान कृष्ण सूर्य है, कृष्ण सूर्य साम, भगवान कृष्ण सूर्य है और उनकी किरण आत्मा है, अर्थात श्री कृष्ण की जीव शक्ति है, जैसे किरण सूर्य की शक्ति है, उसी तरह आत्मा श्री कृष्ण की शक्ति है। और अग्नि रे ज्वाला चाहिए स्वाभाविक कृष्ण रे तीन प्रकार शक्ति हो, कृष्ण की ये तीन प्रकार की स्वाभाविक शक्ति है। 110 एक देश संस्कृत है, एक देश स्थित अग्नि ज्योत्सना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणो शक्ति तथा इदम अखिलम जगत। सारा जगत ये तीन शक्तियों से प्रकाशित है। जैसे एक देश स्थित अग्नि, अग्नि एक देश में एक जगह पे स्थित है, लेकिन ज्योत्सना विस्तारिणी यथा, लेकिन वो अग्नि अपनी हीट एंड लाइट विस्तार करता है, तो दूर दूर तक हमें ये अग्नि का तापमान और अग्नि का प्रकाश हमें अनुभव होता है, लेकिन अग्नि एक जगह पर है। जैसे घर में फायरप्लेस हो तो फायरप्लेस एक जगह है, लेकिन फायरप्लेस सारा फ्लोर सारा कमरा गर्म कर देती है, तो वो अग्नि सब जगह नहीं जाता, अपनी हीट एंड लाइट ज्योत्सना विस्तारिणी यथा एक देश स्थित अग्नि ज्योत्सना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणो शक्ति ब्रह्म कृष्ण उनकी ये पराशक्ति है। परस्य ब्रह्मणो शक्ति जीव एक कृष्ण का ऐसे अंश है जैसे हीट एंड लाइट अग्नि की। तथा इदम अखिलम जगत जिस तरह एक स्थान पर रही अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैलता है, उसी तरह परम ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति या इस ब्रह्मांड में फैली हुई है। इस ब्रह्मांड में भगवान की शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति ये सब शक्ति सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। सो कृष्ण रे स्वाभाविक तीन शक्ति प्रणी नीति चित्त शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति। सो कृष्ण की तीन शक्ति है, जीव शक्ति माया शक्ति और चित्त शक्ति। चित्त शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान की अंतरंग शक्ति है, भगवान की स्वरूप शक्ति है। ओके 101 111 कृष्ण स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति चित्त शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति। तो कृष्ण की स्वाभाविक अनंत शक्ति है, लेकिन उनमें तीन मुख्य शक्ति है। कृष्ण की परास्य शक्ति विविधैव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। ये श्लोक आगे शायद आएगा कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, अनंत रूपी शक्तियां भगवान की है, उनमें तीन प्रधान है, इसलिए यहां कृष्ण में स्वाभाविक तीन शक्ति, तो एक शक्ति है चित्त शक्ति। चित्त शक्ति का अर्थ है योग माया, चित्त शक्ति, अंतरंग शक्ति, या तो भगवान के धाम में जो शक्ति है चित्त शक्ति। तो ये शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, अर्थात चित्त शक्ति कहते हैं, अर्थात स्वरूप शक्ति कहते हैं, अर्थात भगवान की खुद की शक्ति। दूसरी सब शक्तियां भगवान की है लेकिन भगवान से भिन्न है। जैसे ये मेरी ये हटाना, या तो जैसे मैं राजा हूं और मेरी शक्ति, मैं किसी को तलवार से मारता हूं तो मेरी स्वरूप शक्ति से मारता हूं, लेकिन मेरा लश्कर, मेरा सिपाही मारता है मेरे ऑर्डर से मारता है, तो वो मेरी स्वरूप शक्ति या तो मेरी खुद की शक्ति है और नहीं भी, मेरे ऑर्डर से वो मार रहा है लेकिन मेरा हाथ नहीं उनका हाथ। तो वो विभिन्न है राजा की शक्ति, सिपाही ये राजा की ही शक्ति। इसी तरह कृष्ण की चित्त शक्ति है स्वरूप शक्ति है, उनकी खुद की शक्ति, और जीव उनकी तथस्थ शक्ति है। पहले हमने चर्चा की उनकी भिन्ना शक्ति, भिन्ना जीव उनसे भिन्न है, उनसे एक रूप नहीं है, भगवान से हमेशा भिन्न रहता है जीव। जीव कभी भी भगवान नहीं बनता, न जीव भगवान में मिलके एक रूप होता है, जीव जीव ही रहता है सनातन काल तक, भगवान से अलग रहता है। तो चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। माया शक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की इल्यूजरी एनर्जी जो जीव को अज्ञानता में डालती है, अज्ञानता में डालती है, वो माया शक्ति है जो भौतिक जगत पैदा करती है। अर्थात माया का अर्थ है प्रपंच, अर्थात पांच भौतिक जगत, भौतिक पांच भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच भूतों, ये पंचभूत ये माया शक्ति है, और ये पंचभूत से ये जगत बना है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये पांच मन बुद्धि अहंकार। तो ये भगवान की भिन्ना प्रकृति है, भगवान से अलग हो गई वो शक्ति है, भगवान से भिन्न शक्ति। ये शक्ति भगवान में नहीं है, स्वरूप शक्ति नहीं है भगवान की, भगवान से अलग शक्ति है। प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी? कि गाय के थन में जब दूध होता है तो हम बोलते हैं गाय है, लेकिन जैसे गाय के थन में से आपने हमने दूध निकाल लिया, तो दूध ये शक्ति है, ये गाय की शक्ति है। दूध पियोगे ताकत शक्ति आएगी, 24 घंटा चल सकोगे, शक्ति है गाय की शक्ति है, लेकिन वो गाय से भिन्न हो गई, दूध निकाल लिया इसलिए गाय से दूध भिन्न अलग हो गया। तो इसको बोलते हैं गाय की भिन्ना प्रकृति रष्टदा, ये भूमिर अपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टदा। तो ये प्रपंच, ये माया शक्ति, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये भगवान की ही शक्ति है लेकिन भगवान से अलग। जैसे सिपाही का उदाहरण मैंने दिया, एक राजा की ही शक्ति है, राजा ने उनको एम्पावर किया है सिपाही को, तो सिपाही अगर किसी को मारेगा डांटेगा तो सिपाही को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि राजा ने उनको एम्पावर किया है, शक्ति दी है, राजा की शक्ति है सिपाही, लेकिन भिन्न है, राजा से भिन्न शक्ति है। और राजा अगर किसी को अपने हाथ से मारे तो वो अपनी शक्ति से मारते, उनको स्वरूप शक्ति बोलते हैं। तो तीन प्रकार की शक्ति है कृष्ण की, स्वरूप शक्ति अथवा तो चित्त शक्ति, और दूसरी है माया शक्ति अथवा तो भिन्न भगवान से अलग भगवान की शक्ति दूध और गाय, और तीसरे है तथस्थ शक्ति जिसको हम जीव कहते हैं आत्मा। तो ये आत्मा के स्तर पर हमें रहना होगा, और जब इस स्तर पर रहोगे तो दुखों नहीं और आनंद ही आनंद, और आनंद का वर्धन होता जाएगा। लेकिन आत्मा के स्तर पर हमेशा रहना होगा। तो आइए हम यहाँ कथा को संपन्न करते हैं। हरे कृष्ण।